हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। हम लोग वहाँ पर आगे चलकर भी तो बात कर सकते हैं ना? सबसे पहले हमें ये पुल पार करना चाहिए। पुल पार करने के बाद हम उधर जाकर बात करेंगे। विक्रांत रंधावा तो तारापरी का दीवाना था। तारापरी जो कहे भी वो वही करने के लिए तैयार था और बोला, ठीक है तारा, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगा। बोलो क्या करना है, वहाँ जाना है ना? चलो वहाँ चलते हैं। ऐसा कहकर उसने अचानक से तारा और करिश्मा का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही विक्रांत ने इस तरह से तारा और करिश्मा का हाथ पकड़ा, करिश्मा और तारा दोनों ही उसे घूर कर देखने लगीं। तभी विक्रांत रंधावा जल्दी से बोला, अरे तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो? तुम लोगों को उस पार जाना है ना, तो मैं तुम लोगों को उस पार लेकर जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन दोनों का हाथ पकड़ते ही, पलक झपकते ही वो दोनों पुल के पास शिव मंदिर के ठीक सामने खड़े हुए थे। तारापरी शिव मंदिर को देखकर मुस्कुराने लगी। तारा अच्छे से समझ चुकी थी कि विक्रांत रंधावा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था उन्हें ये पुल पार करने के लिए। पुल पार करने के बाद करिश्मा और तारापरी दोनों ही शिव मंदिर की ओर देखने लगीं। शिव मंदिर को देखकर ही उन्हें एहसास हो गया कि हो न हो अमन के पिताजी यहीं कहीं हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें सात चक्र को तोड़ना होगा। तारापरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से किस तरह से शुरुआत करे। ऊपर से विक्रांत रंधावा नाम की मुसीबत उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी। विक्रांत रंधावा को देखकर करिश्मा एक बार फिर गुस्से से भर गई और कहने लगी, विक्रांत तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो? तुम इस तरह की बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तारा कौन है? करिश्मा की बात सुनकर विक्रांत हंसने लगा और कहने लगा, आंटी आंटी, मैं आपसे प्यार से पेश आ रहा हूँ और आप हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैंने आपसे कहा ना, मेरे और तारा के बीच में मत आइए, तो मतलब मत आइए। अगर आप एक बार फिर हमारे बीच में आईं, तो जो कुछ आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। विक्रांत ने सीधे सीधे करिश्मा को धमकी दी। विक्रांत की धमकी सुनकर करिश्मा भी तैश में आ गई और जल्दी ही वो एक जिन के रूप में आकर विक्रांत रंधावा के सामने खड़ी हुई। तारापरी उन दोनों को देख रही थी क्योंकि वो बिना समझदारी के कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी अगर उसने कोई भी बेवकूफ़ी कर दी तो वो अमन के पिताजी का पता तो खो ही देगी, साथ ही साथ राक्षस के अंश से भी हार जाएगी। इसलिए बिना सोचे समझे वो एक भी कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि तारापरी के पास अब एक इंसानी दिमाग था और इसीलिए उसने इंसानी दिमाग की सोचने समझने की शक्ति का प्रयोग करने का फैसला किया था। करिश्मा जी जिन रूप में आने पर विक्रांत रंधावा को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो केवल तारा को बड़े ही प्यार से निहारे जा रहा था। तभी करिश्मा जी ने विक्रांत के ऊपर आग के शोले बरसाना शुरू कर दिए, लेकिन विक्रांत रंधावा के पास वो शोले पहुंचने से पहले ही खत्म होते जा रहे थे। करिश्मा जी ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई। करिश्मा जी को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने विक्रांत रंधावा खड़ा हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस था, और करिश्मा जी की जान लेना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मामूली बात थी। तब तारापरी ने विक्रांत रंधावा से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो और इस तरह से हमारे पीछे आने का तुम्हारा क्या कारण है और तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तारापरी विक्रांत रंधावा के मुंह से सुनना चाहती थी कि वो एक राक्षस है और उसका अंश उसके अंदर है। तब विक्रांत रंधावा तारा की आंखों में देखते हुए बोला, मेरा नाम राजा विक्रम सिंह है। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने अपने पिछले जन्म का नाम तारा के सामने बताया, तारा की आंखें हैरानी के मारे फटी रह गईं। वहीं करिश्मा जी भी पूरी तरह से हैरान हो गई और उसे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसकी शक्तियाँ विक्रांत रंधावा के आगे फीकी पड़ चुकी थीं। क्योंकि विक्रांत रंधावा पिछले जन्म का राजा विक्रम सिंह था और उसके साथ उसकी माँ की भी शक्तियाँ थीं। इतना ही नहीं, करिश्मा जी को ये भी समझ में आ गया था कि पिछले जन्म की जो राजा विक्रम सिंह की माँ थी, जिस पर नज़र रखने के लिए उन्होंने अपने दो विशाल जिन्नात को लगाया था, उनकी लाश उन्हें वहाँ मिली थी, तो उन्हें समझने में अब देर नहीं लगी कि उन जिन्नातों की जान किसी और ने नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा ने ही ली होगी। अब करिश्मा जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि एक तो तारा की जान खतरे में थी और एक अमन वहाँ नहीं था, तो अमन के एब्सेंट में उसे तारा की हर हाल में रक्षा करनी थी। तब करिश्मा जी ने गुस्से से विक्रांत रंधावा की ओर देखकर कहा, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे दो जिन्नातों को भी तुमने ही जान ली है। शायद तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। पिछले जन्म में जब तुम राजा विक्रम सिंह थे, तब उस जन्म में मैं भी मौजूद थी और मैंने तुम्हारे द्वारा किया गया हर बुरा काम अपनी इन आँखों से देखा है। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, विक्रांत रंधावा जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, वाह, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि पिछले जन्म के सारे रिश्तेदार मुझे मेरे जन्म में भी मिल जाएंगे। अरे वाह करिश्मा जी, करिश्मा जी, आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। वेल, जब आपको इस बात का पता चल ही गया है कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, तो आपकी भलाई इसी में है कि आप अभी और इसी वक्त तारा को यहाँ छोड़कर चली जाइए, क्योंकि मैं अपनी तारा को लेकर जाने के लिए आया हूँ। मैं उसे अपनी दुनिया में लेकर जाऊँगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहूँगा। मुझे मेरी तारा से कोई अलग नहीं कर सकता है। और अगर तुम भी पिछले जन्म में मेरे हर एक किए गए काम की साक्षी हो, तो तुम्हें इस बात के बारे में तो पता ही होगा, राजा विक्रम सिंह अगर कोई चीज ठान लेता है तो उसे पाकर ही रहता है। और मुझे तारा चाहिए तो मतलब तारा चाहिए। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो, तो अभी और इसी वक्त मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम मेरा असली रूप देख ही चुकी हो। जैसे ही राजा विक्रम सिंह ने ये कहा, करिश्मा जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया और फिर करिश्मा जी ने अपनी पूरी जान लगाकर विक्रांत रंधावा पर हमला करना शुरू कर दिया। और विक्रांत रंधावा उनके हर एक वार को इतने मामूली तरीके से ले रहा था मानो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। पर जब विक्रांत रंधावा को लगा कि करिश्मा जी ऐसे बाज नहीं आने वाली थी, तो विक्रांत रंधावा धीरे धीरे अपने विशाल रूप में आने लगा और सीधा करिश्मा जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। करिश्मा विक्रांत रंधावा का इतना बड़ा भयानक रूप देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक और डर गई, बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। करिश्मा जी ने नहीं सोचा था कि विक्रांत रंधावा का इतना खतरनाक रूप भी हो सकता था। अब तो करिश्मा जी को भी विक्रांत के इस तरह के रूप से डर लगने लगा, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो अच्छी तरह से जानती थी, अगर विक्रांत रंधावा उनके चेहरे पर छुपा हुआ डर देख लेगा, तो वो उन पर बुरी तरह से हावी हो सकता है। और करिश्मा जी ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी, इसीलिए करिश्मा जी ने जोरों शोरों से उस राक्षस से मुकाबला करना शुरू कर दिया। लत्ती भर भी वो मुकाबला करने से पीछे नहीं हट रही थी। तभी विक्रांत रंधावा के कि करिश्मा उस पर हमला करती, करिश्मा की गर्दन को जोरों से पकड़ लिया और उनकी जान लेने की पूरी कोशिश करने लगा। जैसे ही तारा ने ये देखा, उसने सोच लिया कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है, इसलिए जल्दी ही तारा अपनी जादुई शक्तियों द्वारा उड़ने लगी और उड़कर उसने अपनी जादुई छड़ी से सीधा विक्रांत पर हमला कर दिया। जैसे ही तारा परी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग विक्रांत रंधावा पर किया, विक्रांत रंधावा तुरंत अपने इंसान के रूप में आ गया। और जबकि करिश्मा जी तारा परी को देखकर हैरान हो गईं, उसकी आंखें हैरत के मारे फटी रह गईं। तारा परी का रूप एकदम से बदल चुका था। कहां तो पहले तारा एकदम नॉर्मल से वेश में करिश्मा जी के साथ आई थी, लेकिन अब एक पल में तारा का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। वो अपने पूरे परी रूप में आ गई थी। उसके जिस्म पर एकदम सफेद जादू के कपड़े आ गए थे, जिन पर हीरो की चमक दूर से ही पड़ रही थी। साथ ही साथ तारा परी के खूबसूरत बाल उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उसके हाथ में एक सुनहरी रंग की छड़ी थी, जिससे उसने विक्रांत रंधावा पर हमला किया था। जैसे ही करिश्मा जी ने अपनी बहू तारा का ये रूप देखा, उनकी आंखें हैरानी के मारे फटी रह गईं। और तारा परी के हाथों में खूबसूरत सा सफेद परी लोक का जोड़ा और उसके साथ सुनहरी छड़ी, ये देखते ही उसने एकदम से पहचान लिया कि उनकी बहू कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक परी थी। करिश्मा जी हैरत के मारे इंसानी रूप में आ गईं और तारा परी को देखने लगीं। तभी तारा परी ने अपना हमला विक्रांत रंधावा पर करना जारी रखा। जल्दी ही उसने अपने मंत्रों और जादुई छड़ी का प्रयोग करके विक्रांत को अपने जादू के पिंजरे में कैद कर लिया। विक्रांत रंधावा की शक्तियाँ वहाँ ज्यादा काम नहीं कर रही थीं, क्योंकि वो उस वक्त शिव मंदिर के ठीक सामने थे। तारा परी का विक्रांत रंधावा को शिव मंदिर के पास लाने का मकसद यही था, ताकि अगर विक्रांत रंधावा उस पर हमला करे तो वो उसे जीत ना पाए और तारा उसे जीत जाए। और यही हुआ था। तारा परी ने विक्रांत रंधावा को एक जादू के पिंजरे में कैद कर दिया था और उसके बाद अपने नॉर्मल वेश में आ गई थी। ये सब कुछ तारा ने बड़ी ही जल्दी किया था, क्योंकि उसे अभी एक काम और पूरा करना था। वो कोई और नहीं बल्कि अमन के पिताजी को छुड़ाना था। जैसे ही तारा अपने वेश में आई और करिश्मा जी का मुंह उसने खुला हुआ देखा तो वो समझ चुकी थी कि करिश्मा जी को जरूर शौक लगा होगा। इसलिए वो करिश्मा जी के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, मॉम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपके दिल और दिमाग में इस वक्त काफी सारे सवाल जवाब चल रहे होंगे, लेकिन इस वक्त किसी भी सवाल जवाब का करने का समय नहीं है। अभी हमें पिताजी को ढूंढना होगा, इसीलिए हमें अब यहाँ से आगे बढ़ना होगा और आप विक्रांत रंधावा की तरफ से बेफिक्र रहिए, ये मेरे जादू को अभी नहीं तोड़ पाएगा। ऐसा कहकर तारा छोटी सी स्माइल करते हुए हैरान परेशान करिश्मा जी को लेकर आगे बढ़ने लगी। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों के मालिक अमित की पत्नी डायन सड़कों पर घूम रही थी किसी ऐसे मर्द की तलाश में जो उसके जिस्म की प्यास बुझा सके, लेकिन उसे अभी तक ऐसा कोई मर्द नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खूंखार होती जा रही थी। और उसने सोच लिया था कि उसका अब एक मर्द से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि वो मर्दों के साथ रिश्ता नहीं बनाती थी, उनके अंदर की जितनी भी शक्ति होती थी उसको अपने अंदर खींच लिया करती थी, जिससे वो डायन कितने ही सालों तक और जवान और खूबसूरत रह सकती थी। उसकी खूबसूरती का यही राज था। और जल्दी ही उस डायन को दो मजदूर आते हुए दिखाई दिए जिनके हाथ में भरे थैले थे। उन मजदूरों को देखकर डायन के मन में लालच आ गया, क्योंकि वो मजदूर भले ही गरीब थे लेकिन जिस्म से वो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे और मजबूत दिखाई दे रहे थे। इसीलिए उस डायन ने उन्हें अपने जाल में फंसाने की सोच ली और जैसे ही वो कुछ सोचते हुए हल्के हल्के कदम बढ़ाती हुई ठीक मजदूरों के सामने जाकर बेहोशी का नाटक करने लगी। जैसे ही मजदूरों ने एक बड़ी खूबसूरत लड़की को इस तरह से बेहोश देखा और उसके आधे अधूरे कपड़े देखे तो उनके मन में भी उसे लेकर लालच आ गया। वैसे भी वो गरीब लोग थे और उन दोनों ने कितने ही दिनों से किसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं बनाया था। जब भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ा करते थे वो किसी पड़ोस की लड़की या औरत को पैसे देकर उनके साथ अपने जिस्म की जरूरत पूरी किया करते थे, लेकिन आज जैसे ही उन्होंने अपने सामने एक अमीर और खूबसूरत लड़की को देखा तो वो अपने होश खो बैठे और जल्दी ही वो दोनों चुपके से उसे जंगल की ओर ले गए। उन्हें इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि वो लड़की उन्हें नहीं ले जा रही थी बल्कि वो लड़की उन्हें ले जा रही थी। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित मल्लिका के साथ काली काली पहाड़ी पर पहुंच चुका था जहां उसके गुरुजी उसका इंतजार कर रहे थे। अमित जैसे ही वहां गया एक बार फिर उसे गुरुजी तक पहुंचाने के लिए सर्प महाराज के कबीले को पार करना पड़ा। सर्प महाराज को गुरुजी ने काम तो दे दिया था लेकिन वो तब तक वहां नहीं जा सकता था जब तक कि गुरु उसे इशारा नहीं करता, इसीलिए उसे इंतजार करना था। लेकिन उसका इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था क्योंकि तारा पहले द्वार तक पहुंचने वाली थी और उस पहले द्वार पर उसका सामना सर्प महाराज से ही होने वाला था।